तो आज नरसिंह जयंती का महोत्सव है, आप सबका स्वागत है इस्कॉन के इस मंदिर में। वैसे तो नरसिंह देव की कथा कई बार हम लोग सुन चुके हैं, सुनना भी चाहिए। भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे, आचार्य समझाते हैं, पांच भक्तों की बातों को सत्य करने के लिए। श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भाषितम अर्थात जो कहा गया, निज भृत्य अर्थात उनके भक्तों के द्वारा, सत्यम विधातुम मतलब उसको सत्य करने के लिए। भगवान प्रकट हुए, स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। सभा के स्तंभ को फाड़कर नरसिंह देव प्रकट हुए। तो कौन थे ये पांच लोग या पांच भक्त जिनके लिए नरसिंह देव प्रकट हुए? पहले हम सब जानते हैं प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, आप सब जानते हैं कि हिरण्यकश्यप बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था, अपने ही पुत्र के प्रति बहुत से उसने अपराध किए, दंड देने का प्रयास किया, कष्ट दिया, अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास किया। ये बड़े आश्चर्य की बात होती है कि एक पिता अपने ही पुत्र को, वो भी 5 साल के छोटे पुत्र को मारने का प्रयास करे। तो हिरण्यकश्यपु ने इसको किया, बहुत क्रूर थे हिरण्यकश्यपु। तो प्रहलाद की बात को सत्य करने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जब बात कर रहे थे तो हिरण्यकश्यपु ने प्रश्न किया, कहां है तुम्हारा भगवान? किसके बल पर तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ रही है? कौन तुम्हें ये शक्ति दे रहा? प्रहलाद ने कहा, पिताजी जहां से आपकी शक्ति आती है वहीं से मेरी शक्ति आ रही है। शक्ति एक ही जगह से आती है, भगवान श्री कृष्ण से। प्रहलाद की ये बात सुनकर हिरण्यकश्यपु को विश्वास नहीं हुआ। ऐसे आगे बहुत सी शिक्षाएं प्रहलाद महाराज ने दी, क्रोध आ गया, पूछने लगे कहां है तुम्हारा भगवान? तुम्हें बड़ा विश्वास है अपने भगवान पर, कहां है? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने कहा हां है। देखिए, ये विश्वास है, ये श्रद्धा है, ये आत्मविश्वास है, पूरा विश्वास था भगवान है यहां। कभी कभी हमसे ये प्रश्न किया जाता है कि विश्वास और अहंकार में क्या अंतर है। व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर हम कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूं तो यह अहंकार है कि विश्वास है? तो कैसे मानना चाहिए कि विश्वास क्या है और अहंकार क्या है? इन दोनों में भेद क्या है? जब हम ये सोचते हैं कि हम कोई कार्य कर सकते हैं, ये विश्वास है। हम कोई कार्य कर सकते हैं, आपसे कहा जाए कर सकते हैं, हां कर सकते हैं, विश्वास है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि केवल हम ही ये कार्य कर सकते हैं, ये अहंकार है। बड़ा सरल है समझना। जब हम ये समझते हैं कि हम ये कार्य कर सकते हैं, ये विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है हम ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब ये मन में आता है कि केवल हम ही ये कार्य कर सकते हैं, ये अहंकार है। प्रहलाद महाराज के हृदय में अहंकार नहीं था कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे कहने पर भगवान प्रकट होंगे, नहीं। उनके हृदय में विश्वास था। हिरण्यकश्यपु ने पूछ लिया, खंभे में है? हां है। और जिस समय खंभे की ओर दिखा रहा था हिरण्यकश्यपु, ऐसे दिखाया, खंभे में है? इस खंभे में? प्रहलाद ने घूमकर देखा खंभे की ओर, नरसिंह देव पहले से वहां उपस्थित थे, अपने हाथ से ऐसे आशीष दे रहे थे, कह दो मैं यहां हूं, चिंता मत करो। सत्यम विधातु, प्रहलाद महाराज ने कहा खंभे में है, खंभे में प्रकट हो गए भगवान। तो पहले भक्त प्रहलाद, जिनकी बातों को, जिनके वचनों को सत्य करने के लिए भगवान आए। दूसरे भक्त हैं नारद मुनि। नारद मुनि ने प्रहलाद के विषय में कहा था, जब प्रहलाद मां के गर्भ में था, कयाधु के गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, इंद्र घसीट कर खींचते हुए ले जा रहे थे कयाधु को मारने के लिए, कि इसको ले जाऊंगा, अपने पास रखूंगा थोड़ा समय, ये जब बालक उत्पन्न होगा, हिरण्यकश्यपु का पुत्र है, उसकी तरह असुर होगा, इसको भी मार दूंगा। उस समय नारद मुनि ने कहा था, इसके गर्भ में जो है वो बड़ा महान भक्त है और इसके लिए भगवान प्रकट होंगे। नारद मुनि के उन शब्दों को कि इसके गर्भ में जो है महान भक्त है, सत्य करने के लिए कि प्रहलाद मेरा महान भक्त है, ये दुनिया को दिखाने के लिए भगवान प्रकट हुए। अब ये बात आती है मन में कि अगर प्रहलाद इतने बड़े भक्त हैं तो इतना कष्ट क्यों दिया नरसिंह देव ने, प्रेम करते हैं उनके लिए प्रकट हो सकते हैं। देवताओं को उन्होंने कहा, जब देवता गए भगवान के पास तो देवताओं को उन्होंने कहा कि जब हिरण्यकश्यपु मेरे भक्त प्रहलाद को कष्ट देगा तब मैं प्रकट होऊंगा, इतना प्रेम है तो फिर कष्ट क्यों देने दिया। क्या प्रहलाद को पहले नहीं बचा सकते थे, भगवान के अंदर क्या इतनी शक्ति नहीं थी, तो क्यों भगवान ने अंत तक इंतजार किया। एक कारण कि वो अपने भक्त प्रहलाद का गुणगान करवाना चाहते थे। अगर सोच लीजिए, प्रहलाद को कष्ट नहीं दिया होता कुछ भी हिरण्यकश्यपु ने, केवल मन में सोचा होता कि कल से मैं इसे कष्ट दूंगा, भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यपु को मार दिया होता, तो आज हम लोग प्रहलाद की बात नहीं करते। कोई प्रहलाद की बात नहीं करता, प्रहलाद की शिक्षाओं को, प्रहलाद की प्रार्थनाओं को कोई चर्चा नहीं करता। आज हम नरसिंह देव के नाम से पहले प्रहलाद का नाम लेते हैं। नरसिंह देव ने कहा है नरसिंह पुराण में, नरसिंह चतुर्दशी के उपवास का मार्ग ये है कि उस दिन प्रहलाद का स्मरण होना चाहिए। भागवत में नरसिंह देव कहते हैं कि तुम्हारी इन प्रार्थनाओं को, तुम्हें मुझे जो भी स्मरण करेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो ये कारण था, प्रहलाद का गुणगान करवाना चाहते थे इसीलिए उसे कष्ट दिया। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है सीखने के लिए। हम जब भगवान की कथाओं को सुने तो हमें उनसे शिक्षाएं लेनी चाहिए। आज हम प्रारंभ से ही सीख चुके हैं कि विश्वास और अहंकार में अंतर क्या। यहां और एक बात हम सीखते हैं, कष्ट जीवन में, भक्तों के जीवन में भी आते हैं और फिर अन्यों के जीवन में भी आते हैं। तो भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आते हैं? हमारे जीवन में जब कष्ट आए, प्रहलाद ने क्या सोचा? क्या जब प्रहलाद पर अत्याचार किया जा रहा था, प्रहलाद को सांपों के बीच फेंका जा रहा था, पर्वत की चोटी से फेंका जा रहा था, समुद्र के भीतर जब प्रहलाद को फेंका जा गया था, क्या प्रहलाद ने यह सोच लिया कि भगवान है या नहीं? मैं इतना नाम ले रहा हूं, मैं इतना स्मरण कर रहा हूं, भगवान है भी कि नहीं, मेरी रक्षा करेंगे कि नहीं? एक क्षण भी नहीं सोचा प्रहलाद ने, कभी उसके मन में ये नहीं आया कि भगवान है या नहीं। उसके मन में तो यही आया, भगवान मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं। ये हमें प्रहलाद से सीखना है। जैसे एक उदाहरण बाहरी बाहरी दृष्टि से हम लोग देख सकते हैं। आप सबने सुना होगा, हमें विश्वास है आपने कभी देखा नहीं होगा, कि बड़े बड़े शहरों में घोड़ों की रेस होती है। आप में से कभी कोई गए हैं घोड़ों की रेस में? भाग्यशाली लोग हैं सब यहां। प्रार्थना करते हैं कि कारोबार में कभी ऐसा ना हो कि आगे चलकर घोड़ों की रेस का मैदान बने, क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो खैर, घोड़ों की रेस होती है। अब उसमें देखिए, जब घोड़ा भागता है, हमें बताइए क्या वो जीतने के लिए भागता है? घोड़े की बात कर रहे हैं, घोड़े पर सवार की बात नहीं कर रहे। घोड़ा जीतने के लिए भागता है कभी? क्या विचार आप लोगों का? अब जानते हैं घोड़े की खैर आपने देखा नहीं है, भाग्यवान है, हमने भी देखा नहीं है, आप सोचेंगे आप कैसे बता रहे हैं, हम भी गए नहीं है कभी, लेकिन ऐसे कभी कभी सुना है कि ऐसे बने होते हैं, जैसे ही शुरू होती रेस वो खुल जाता है पिंजड़ा जैसा और सारे घोड़े भागते हैं और उनमें से एक घोड़ा कोई पहला आता है कोई दूसरा आता है। आप ये जान लीजिए कि जो घोड़ा भाग रहा है वो जीतने के लिए नहीं भागता, उसको जीत से क्या लेना देना, उसको जाके वही चने मिलने वाले हैं या जो भी खाने के लिए मिलना है ना। पैसा तो मालिक को मिलता है, ऐसा तो नहीं कि उसको पैसा मिल गया तो फिर उसको एसी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, वो खड़ा रहता है वहीं तबेले में, तबेला नहीं क्या बोलते हैं उसको, घोड़े का अस्तबल, तबेला तो गाय को कहा, वहीं खड़ा रहता। तो घोड़ा जीतने के लिए नहीं भागता, घोड़ा क्यों भागता है, क्योंकि उसका मालिक उसको कष्ट देता है, अगर वो मालिक मारे नहीं उसको तो भागेगा नहीं घोड़ा, मालिक का काम है पीछे से मारता है और मारता है, कभी उसकी पूंछ के पीछे मारता है, कभी उसको पैर के उसके पैर जो होते हैं जो मालिक मतलब जो उसके ऊपर बैठा है वो कभी कभी उसको पेट पर मारता है पैरों से नीचे से, घोड़ा तब भागता है। घोड़े को पता होता है अगर यहां मार रहे हैं तो और तेज मार भागना है, और मारा तो और तेज भागना है। तो घोड़ा जीतने के लिए नहीं भागता, घोड़ा मार खाता है कष्ट खाता है इसलिए भागता है, लेकिन उसका मालिक उसको कष्ट दे रहा है जिताने के लिए। इसी तरह जब हमारे जीवन में कष्ट आए हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे मालिक हमें जिताने के लिए कष्ट दे रहे हैं, है ना? जैसे घोड़े का मालिक घोड़े को जिताने के लिए उसको मारता है, लात मारता है, उसके पास चाबुक होती है, चाबुक से मारता है, कष्ट देता है, किसको कष्ट दे रहा है? वो घोड़ा जो उसको पैसे लाकर देने वाला है, वो घोड़ा जो उसको आनंद देने वाला है उसको ही कष्ट दे रहा है, लेकिन घोड़ा जो कष्ट दे रहा है उसके लिए जीतता है। इसलिए घोड़ा जीतने के लिए नहीं कष्ट के लिए भागता है लेकिन जीतता है। इसलिए हमारे जीवन में जब कष्ट आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे मालिक हमें जिताने के लिए हमें कष्ट दे रहे हैं। हमारे मालिक कौन है? हाँ, श्री कृष्ण। तो भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। तो ये प्रश्न आया था कि प्रहलाद को कष्ट क्यों दिए? उसको जिताने के लिए, उनका गुणगान कराने के लिए। बलि महाराज को भगवान ने कष्ट दिए, सब कुछ समर्पण कर दिया बलि महाराज। ये भागवत की बड़ी विचित्र कथा है, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं किया, जहां सब कुछ समर्पण कर दिया हो भक्त ने, ये जानते हुए कि मुझे धोखा दे रहे हैं। बलि महाराज को उनके गुरु ने पहले ही बता दिया, विष्णु है ये वामन, ये बटुक ब्रह्मचारी नहीं है, विष्णु है वो, भगवान ये रूप लेकर आया है, तुम्हारा सब कुछ हर लेगा, जो अभी तुमने वचन लिया है, अभी तुमने हाथ में जल लेकर छोड़ा नहीं है, रुक जाओ, शास्त्र के अनुसार अगर तुम अपना वचन इस समय रोक देते हो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। देखिए सारी चीजें बता दी बलि महाराज को कि चिंता भी मत करो, पाप भी नहीं लगने वाला है, शास्त्र को भी नहीं तोड़ोगे, सब कुछ रह जाएगा, वचन मत दो। बलि महाराज ने कहा नहीं, झूठा व्यक्ति इस पृथ्वी पर बोझ है, ये पृथ्वी बड़े बड़े पर्वतों का बोझ सहन कर सकती है, नदियों का बोझ सहन कर सकती है, वृक्षों का बोझ सहन कर सकती है, लेकिन एक झूठे व्यक्ति का बोझ सहन नहीं कर सकती, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया, भगवान ने 3 पग भूमि मांगी, बलि महाराज हंसे, अरे इतने छोटे से हो, इतने छोटे छोटे तुम्हारे पांव हैं, 3 पग भूमि मांग रहे हो, क्या मिलेगा? भगवान ने कहा बस 3 पग भूमि। बलि महाराज ने दे दिया, धोखा दिया भगवान ने, आकार बढ़ा लिया अपना, सारे ब्रह्मांड में 2 पांव केवल, 2, 3 पग रखने की जगह नहीं। बलि से कहा कहां रखूं? बलि ने कहा आपने सारा ब्रह्मांड ले लिया, सारा ब्रह्मांड आपका है, लेकिन अभी तक मेरा सर मेरा है, ये मैं आपको समर्पण करता हूं, अपना 3रा पग मेरे सर पर रखिए। भगवान ने रखा, वचन पूरा किया बलि महाराज ने, फिर भी भगवान ने दंड दिया। भगवान ने कहा तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया, बांध दो इसको, सबके सामने बांध दिया भगवान ने, दंड दे रहे हैं बलि महाराज को। और सारे लोग देख रहे हैं, और इतना ही नहीं देख नहीं रहे, सब लोग कह रहे भगवान बहुत अच्छा किया आपने। उनकी ही पत्नी कह रही है, बलि महाराज की वो पत्नी जो जीवन भर साथ देती है, वो पत्नी कह रही है भगवान को बहुत अच्छा किया आपने, इनको अहंकार हो गया था अपने ऐश्वर्य का, बहुत अच्छा किया। कोई अहंकार नहीं था बलि महाराज को, लेकिन ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान कोई आपको पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई एक फूल लाकर चढ़ा देता है, कोई फल चढ़ा देता है, कोई पानी चढ़ा देता है, आप प्रसन्न हो जाते हो। शास्त्रों में कहा गया है तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलकेन वा, कि केवल तुलसी का दल और जरा सा जल भगवान को अर्पण किया जाए, विक्रीडंती, भगवान बेच देते हैं अपने आप को। ब्रह्मा जी ने कहा, इन्होंने तो सारा तीनों ब्रह्मा तीनों लोक आपको दे दिए, सारा ऐश्वर्य दे दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, फिर भी आपने बंदी बनाई। भगवान ने कहा गुणगान कराने के लिए। और देखिए सत्य है, अगर बलि महाराज ने शुक्राचार्य जी की बात मानकर मना कर दिया होता देने के लिए, तो क्या आज हम यहां बैठकर बलि महाराज की चर्चा करते हैं? क्या भागवत में सुखदेव गोस्वामी बलि महाराज की चर्चा करते हैं? भगवान गुणगान कराते हैं। इसलिए जब जीवन में कष्ट आए तो इसको सोच लीजिए कि हमारे मालिक हमें जिताना चाहते हैं। हम उस घोड़े की तरह हैं जिसको कष्ट दिया जा रहा है, लेकिन मालिक चाहते हैं कि जीते। अगर हम कष्टों में पड़कर मालिक को ही बुरा भला कहने लगेंगे तो फिर जीत नहीं पाएंगे। तो प्रह्लाद महाराज को कष्ट दिए थे तो नारद मुनि के वचनों को पूरा करने के लिए। तीसरे भक्त, हमने दो भक्त बताए आपको अब तक, पहले प्रह्लाद महाराज, दूसरे नारद मुनि। तीसरे भक्त हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ली, वचन मांगने लगा, मांगो क्या वरदान मांगना है? हिरण्यकश्यप ने पूरी बुद्धि लगाकर मांग ली, अंदर नहीं मरू, बाहर नहीं मरू, दिन में नहीं, रात में नहीं, मनुष्य से नहीं, जानवर से नहीं, कहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत कुछ लगा लिया। और ब्रह्मा जी ने आंख बंद करके तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के उन वचनों को सत्य करने के लिए कि ना मनुष्य होगा, न जानवर, न मृगम, न मानुषम, नरसिंह देव प्रकट हुए। जब सारी लीला हो गई, प्रहलाद को उन्होंने, प्रहलाद से चर्चा सब हो गई, आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद ब्रह्मा जी गए प्रार्थना करने के लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को देखकर गुस्सा किया। भगवान ने कहा अगली बार जरा संभाल कर वचन देना है, जिसको तुम्हारे मन में जो भी आता है, तुम ये कहा है भागवत में लिखा, भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से हरेक को ऐसे वरदान मत दिया करो। मानो भगवान कह रहे हैं देखो तुम्हारे कारण मुझे ये लेना पड़ा, आधा मनुष्य और आधा जानवर, तो अगली बार नहीं देना। लेकिन उनके वचनों को सत्य करने के लिए आए, ये तीसरे भक्त थे। चौथे भक्त जिनके वचनों को वो पूरा करने के लिए आए, वो थे चार कुमार। चार कुमारों की कथा आप जानते हैं कि कैसे जय और विजय जो भगवान के द्वारपाल हैं, उनको श्राप मिला था, और जब श्राप दे दिया चार कुमारों ने, वो लोग गिर रहे थे, उनका पतन हो रहा था, अपने श्राप को पूरा करने के लिए वो पृथ्वी पर आ रहे थे, तो उस समय चार कुमारों ने भगवान से प्रार्थना की थी, ज्यादा समय मत रखिएगा इन्हें, ठीक है, हमारी गलती हो गई, हमने ये श्राप दे दिया, हमें देना नहीं चाहिए था, लेकिन आप तो दयालु हैं, ज्यादा समय मत रखिएगा, जल्दी से इनको ले आइए। तो वो भी वचन पूरा करना था, और एक भक्त का वचन पूरा करना था। अब कौन बचे? प्रहलाद हो गए, नारद मुनि हो गए, ब्रह्मा जी हो गए, चार कुमार हो गए, अब और एक भक्त जिसके वचन को पूरा करना चाहते थे नरसिंह देव, और वो हैं हिरण्यकश्यपु। वो भी तो भक्त है ना, जय विजय में से हैं एक। हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद की शक्ति को देखा, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, भागवत में इसका वर्णन है कि हिरण्यकश्यपु कहता है कि ये इसकी इतनी शक्ति है, मुझे लगता है कि अगर ये बालक को मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और इसी के कारण विष्णु मेरा वध कर देंगे, मेरी मृत्यु इसके कारण होगी। तो ये कह दिया तो उसको भी सत्य करने के लिए कि हाँ ये तुमने जो कहा वो भी सत्य है, भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि नरसिंह देव एक ही बार प्रकट हुए हैं, ये भी सोच लीजिए। हमने तो केवल एक ही बार सुना है खंभे में से प्रकट हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण इत्यादि में वर्णन है कि कई तरह से भगवान की लीलाएं हुई हैं। एक समय ऐसा था कि हिरण्यकश्यपु शिवजी का भक्त था। इस बार उसने ब्रह्मा जी की पूजा की थी, लेकिन उस समय वो शिवजी का भक्त था, और शिवजी का भक्त था उस समय उसने ये वरदान नहीं मांगा था, आगे पीछे अंदर नहीं बाहर नहीं इत्यादि, लेकिन उस समय वो अपने आप को ही भगवान घोषित करता था। तो उसने प्रहलाद से कहा था कि प्रहलाद शाम तक का समय देता हूं, तो अभी तो बहुत समय इस बार तो दे दिया। उस दिन कहा था शाम तक का समय देता हूं, संध्या तक का मतलब ये समय जब नरसिंहदेव प्रकट होने वाले हैं, मुझे भगवान स्वीकार कर लो नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। और उस समय महल में नहीं था हिरण्यकश्यपु, ऐसे बताते कि बहुत बड़ा स्थान, मान लीजिए आज के समय में कहा तो बहुत बड़ा स्टेडियम कई किलोमीटर तक फैला हुआ। आजकल तो हमारे स्टेडियम आधा एक किलोमीटर के होते होंगे, लेकिन उस कई किलोमीटर तक फैला हुआ स्टेडियम था, उसमें एक बहुत बड़ा स्टेज बना हुआ था, हिरण्यकश्यपु बैठे हैं और ये एक पूरी नगरी जैसी थी। उसका वर्णन है जो अंदर आता था उसकी सारी बीमारी चली जाती थी, भूख प्यास नहीं लगती थी, अगर खाने की इच्छा है तो बहुत से व्यंजन मिलते थे, मतलब वो हिरण्यकश्यपु की नगरी थी। वहां अंदर प्रवेश करके कोई दुखी नहीं रहता था, क्योंकि देवता भी हमेशा उनसे घबराते रहते थे, हवा मंद चलती थी, बीमारी नहीं होती थी इत्यादि। तो वहां पर ऐसे बना था और हिरण्यकश्यपु ने शाम तक का समय दिया, प्रहलाद भी वहीं बैठे थे, प्रहलाद को कहा शाम तक का समय है नहीं तो मार डालूंगा। और जब वो समय होने वाला था तब उस समय नरसिंहदेव प्रकट हुए। उस समय खंभे से प्रकट नहीं हुए, ऐसे वर्णन है, चलकर आए थे नरसिंहदेव, हवा में उड़कर या चलकर आए थे। और जैसे हिरण्यकश्यपु ने देखा अपने सैनिकों को, कहा मार डालो इसको, कौन है ये हवा में उड़ने वाला। तो उन्होंने प्रयास किया तो सारे सैनिक मर गए, और जितने भी उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़े वही उनकी तरफ चले गए, ये भी वर्णन है। तो नरसिंहदेव अलग अलग तरह से प्रकट हुए हैं। एक स्थान पर यह भी वर्णन है कि जब प्रहलाद को कष्ट दे रहा था हिरण्यकश्यपु, तो जो भी अस्त्र शस्त्र उसके सैनिक इस्तेमाल करते प्रहलाद के प्रति, वो नीले रंग के कमल में बदल जाता। नरसिंहदेव को नीला कमल बहुत पसंद है, आज हम लोगों ने अर्पण किया था भगवान को नीला कमल, तो वो नीले कमल में बदल जाता जितने भी। तो थोड़े समय बाद ऐसा हो गया जैसे अभी अभी हम लोगों ने भगवान का पुष्याभिषेक किया, पुष्पों से भर दिया, ऐसे प्रहलाद नीले कमलों से भर गया नरसिंहदेव की योजना से। तो इसीलिए नरसिंहदेव का प्राकट्य कई स्थानों में हुआ है, कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं है कि नरसिंहदेव यहां पर प्रकट हुए हैं। तो हम लोग ये नरसिंहदेव की कथा कई बार सुन चुके हैं, प्रहलाद की कई बार सुन चुके हैं। तो आज थोड़ा सा वर्णन भगवान और प्रहलाद के बीच में जो संवाद हुआ उस पर करेंगे। लीला तो हम सब जानते हैं, ऑफकोर्स लीला को फिर भी सुनना चाहिए बारंबार, ऐसा नहीं है कि हमने सुन लिया कोई लाभ नहीं है। कभी कभी ये प्रश्न आता है ना, कोई हमसे कहते हैं कि हम भगवद गीता पढ़ते हैं कुछ समझ नहीं आता, पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, शब्द समझ नहीं आते, ज्ञान समझ नहीं आता। एक बार एक छोटे बच्चे ने अपने दादाजी से प्रश्न किया, छोटा बच्चा था, देखता था दादाजी रोज बैठकर भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई, उसने भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो थोड़े समय बाद उसने जाकर दादाजी से कहा कि आप जो करते हैं मुझे करना अच्छा लगता है, लेकिन ये जो आप भगवद गीता पढ़ते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं भी पढ़ता हूं इनको फायदा नहीं है पढ़ने का, इसीलिए मैं बंद कर रहा हूं। तो आप बताइए कुछ उपयोग है? मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं देखता हूं कुछ पढ़ता हूं कुछ समझ नहीं आता, तो कोई उपयोग नहीं। तो दादाजी ने कहा कि ठीक है एक काम करो। तो वो पुराने समय का समय था, तो जहां घर में कोयला इस्तेमाल होता था। अब पता नहीं आप सब जानते भी हैं कि नहीं कि कोयला क्या होता है, पता है आप सबको? कभी जलाया है किसी ने कोयला? हाँ पता ना। ओके वेरी गुड। थोड़े समय में पता नहीं होगा, बच्चों को पूछा जाएगा कोयला क्या होता है तो पता नहीं है उनको। हो सकता है फिल्मों में जब तक दिखाएंगे तब तक याद रहेगा, उसके बाद वो भी याद नहीं रहेगा कि क्या होता है कोयला। तो उस समय का कोयला था, तो कोयले की एक टोकरी थी, टोकरी जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, उसमें कोयला भरा हुआ था। तो दादाजी ने कहा एक काम करो, ये जो कोयले की टोकरी है ये लेके जाओ, टोकरी खाली करो और नीचे नदी से जाकर पानी भर के लाओ इसमें मेरे लिए। तो बच्चे को बड़ा अच्छा लगा, वो भाग कर गया, टोकरी में पानी भरा, और जब तक ऊपर लेकर आया तो एक बूंद पानी नहीं, टोकरी में कहां से बचेगा पानी। तो उसने कहा रे ये क्या हुआ, तुमसे कहा था पानी लाओ। उसने कहा मैं तो प्रयास किया, अब की बार जाओ तेज भाग कर आना। तो लड़का फिर गया, फिर पानी भरा, बहुत तेज भाग कर आया जितनी शक्ति थी, लेकिन पानी तो फिर गिर गया सारा। दादाजी ने कहा एक बार और जाओ, चार पांच बार चला गया। अब आप जानते हैं बच्चे भी बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो बच्चे ने दादाजी से कहा कि ये क्या बार बार मुझे कह रहे हैं, इसमें तो पानी नहीं, मैं एक काम करता हूं, मैं थोड़ी बाल्टी ले जाता हूं, आपको पानी चाहिए ना, बाल्टी में ले आता हूं। उन्होंने कहा मुझे बाल्टी नहीं, मुझे इसी में पानी चाहिए, एक बार और जाओ। तो खैर फिर चला गया, बोला कि मैं अब देखूंगा तुम बड़ी तेज भाग कर आना। तो लड़का गया, पानी भरा, बड़ी तेज भाग कर आया, लेकिन जब तक आया तो लड़के ने कहा कि दादाजी ये आप जो कह रहे हो टोकरी में पानी लाना, ये बेकार है, कोई उपयोग नहीं है उसका, क्योंकि टोकरी में पानी आता नहीं है। तो क्या लाभ है आप मुझे बार बार नीचे भेज रहे हो, मैं आ रहा हूं फिर जा रहा हूं, कोई उपयोग नहीं है इसका। दादाजी ने कहा कि काम करो, टोकरी देखो अभी। तो उसने टोकरी देखी, पहले जब लेकर गया था तो एकदम काली थी, कोयला काला होता है, आजकल बताना पड़ेगा आप सबको, तो काली थी एकदम टोकरी। और अब उसने जो देखा तो एकदम साफ हो गई थी टोकरी, अंदर से और बाहर से। क्यों? पानी बार बार लग रहा था, बार बार ला रहा था, पानी में डुबो रहा था फिर ला रहा था, तो पानी से वो साफ हो गई। तो दादाजी ने कहा कोई अंतर दिखाई दिया तुम्हें? तो उसने कहा हाँ टोकरी साफ हो गई अंदर से और बाहर से। उन्होंने कहा यही लाभ है भगवद गीता पढ़ने का, भले तुम्हें समझ नहीं आए, भले तुम्हें कुछ याद नहीं रहे, जैसे इस टोकरी में पानी रहता नहीं है, भले तुम्हें कुछ याद नहीं रहे, लेकिन जैसे ये टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई है, भगवद गीता पढ़ते रहने से तुम्हारा चेतना अंदर और बाहर से साफ हो जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, भगवद गीता का ज्ञान। तो इसीलिए ये विश्वास हमें होना चाहिए, जैसे हम बता रहे थे शुरुआत में कि मैं ये कर सकता हूं, इस चीज को मानना ये विश्वास या आत्मविश्वास कहलाता है, कॉन्फिडेंस कहलाता है। लेकिन केवल मैं ही कर सकता हूं ये अहंकार कहलाता है। तो ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए, हाँ मैं इस काम को कर सकता हूं ये हमें विश्वास होना चाहिए, और वो भी विश्वास भक्तों को भगवान की शक्ति कृपा के बल पर होना चाहिए, अपने बल पर नहीं। तो मैं ये काम कर सकता हूं ये विश्वास है, लेकिन मैं ही ये काम कर सकता हूं ये अहंकार है, ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन कथाओं को हमें बार बार सुनना चाहिए। प्रहलाद महाराज की कथा आप सब जानते हैं, छोटे से बालक, हिरण्यकश्यप ने बड़ा प्रयास कर लिया कि ये विष्णु का नाम नहीं ले, भगवान का नाम नहीं ले, लेकिन ऐसा भागवत में कहा गया है कि प्रहलाद महाराज को कृष्ण नाम के ग्रह ने ग्रसित कर लिया था। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यहां हम लोग देखते हैं कोई कहता है शनि लगा हुआ है, किसी को पता नहीं कोई और ग्रह लगता है, किसी को और कोई ग्रह लगता है, ज्यादातर शनि लगता है, इसीलिए हमें भी शनि पता है, बाकी और कोई ग्रह लगता है कि नहीं पता नहीं। सब कहते हैं कि वो साढ़े साती चल रही है या क्या पता नहीं, शनि की दशा खराब है, गुरु की दशा खराब है, मंगल की दशा खराब है, ग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज कृष्ण नाम के ग्रह से ग्रसित थे, तो इसीलिए उनको कोई चिंता नहीं थी। पिता ने उठाकर पानी में फेंक दिया, समुद्र में, और ऐसा वर्णन है कि समुद्र में फेंककर बहुत बड़ा पर्वत शिला उसके ऊपर रख दी प्रहलाद के ऊपर, ताकि ये बाहर नहीं आ पाए। प्रहलाद महाराज बाहर आ गए भगवान के चिंतन में। वर्णन तो ऐसा है नरसिंह पुराण में कि जब प्रहलाद को उसके घर से उठाकर लेकर गए, प्रहलाद को लेने के लिए सैनिक गए, प्रहलाद महाराज अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, आंखें बंद थी, भगवान का ध्यान कर रहे थे। सैनिकों ने सोचा कि सो रहा है, प्रहलाद सो नहीं रहे थे, सैनिकों ने ऐसे ही उठा लिया। प्रहलाद भगवान के ध्यान में है, उनको पता ही नहीं क्या हुआ, सैनिक उठाकर ले गए, गले में बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया, प्रहलाद महाराज को पता ही नहीं, समुद्र में फेंक दिया, प्रहलाद महाराज को पता ही नहीं। समुद्र ने देखा इतने महान भक्त, इनकी तो मृत्यु होनी नहीं चाहिए, उन्होंने अपनी लहरों से बाहर फेंक दिया उनको कि ये बच जाए। प्रहलाद महाराज जब बाहर आए तो थोड़ी आंख खुली, ध्यान टूटा, और सामने समुद्र देव थे, उनको पूछने लगे आप यहां कैसे आ गए मेरे घर में। समुद्र देव ने कहा महाराज मैं आपके घर में नहीं, आप मेरे घर में आए हैं ये मेरा स्थान है। अब प्रहलाद ने देखा रे ये क्या हो गया, मैं समुद्र में कैसे आ गया। ये ध्यान था भगवान का। भगवान का ध्यान करना है तो ऐसा ध्यान होना चाहिए भगवान का, ऐसे नहीं कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं और क्रिकेट में कितना स्कोर हुआ या कौन सा चौका लगा या छक्का लगा वो हम देख रहे हैं, या फिर मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेज देखे जा रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ध्यान नहीं है भगवान का। भगवान का ध्यान इतना होना चाहिए कि हमें कुछ पता नहीं रहे। जैसे वो कथा बताई जाती है कि एक बार एक योगी जंगल में वन में बैठा, बिल्कुल सबसे अपना ध्यान हटाकर भगवान पर ध्यान कर रहा है। जंगल में इसीलिए गया था कि बाकी चीजों पर ध्यान नहीं जाए, क्योंकि बाहर रहते हैं तो बड़ी ध्यान होता है। और अचानक वहां से एक युवती जा रही है, अब युवती कोई योगी नहीं है, कोई बहुत बड़ी ऋषि नहीं है, वो जा रही है और जाते जाते उसने टक्कर मार दी योगी को, गिर पड़ी, योगी भी गिर गया। बहुत गुस्सा आया योगी को, अरे ये कैसी स्त्री है, इतना भी नहीं जानती, कोई उसको मैनर्स नहीं, तमीज नहीं, और इतना भी नहीं कि चलिए टक्कर लग गई, गिर गई, ठोकर लगी, उठकर क्षमा याचना करे कि महाराज क्षमा कर दीजिए, उठी और चली गई, देखा भी नहीं। उनको बड़ा गुस्सा आया। आप सोचिए, दरअसल व्यक्ति का अपमान ज्यादा तब होता है जब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, उसको बहुत ज्यादा अपमान लगता है। कुछ आप कह दीजिए, कुछ बोल दीजिए, खास करके जब अपने होते हैं ना तो उसमें कोई कुछ कह दे, गुस्सा कर दे तो ठीक रहता, लेकिन आप उनकी ओर ध्यान नहीं दो, नेग्लेक्ट करना, ये बहुत बड़ा अपमान है, व्यक्ति वो सहन नहीं कर पाता। तो देखा भी नहीं, तो बहुत क्रोध आ गया, लेकिन क्या करे, चली गई, ठीक है। तो कुछ समय बाद, एक दो घंटे बीत गए, तीन घंटे, फिर वो स्त्री वापस आ रही थी। तो योगी ने देखा अच्छा अब आ रही, इसको मैं बताता हूं, कम से कम इसको थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए, थोड़ा तो सीखना चाहिए, नियम सीखने चाहिए। उसने रोका स्त्री को, उसने कहा कि अरे कौन से स्कूल में गई थी, शायद ये नहीं पूछा होगा, आजकल हम लोग यही पूछते हैं कौन से स्कूल में पढ़ाई किया क्या। तो स्त्री ने कहा क्या हो गया, आप कौन है, अच्छा मतलब अब जानती भी नहीं। सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास दिला रहे हैं और वो व्यक्ति को कौन है, मैं तो जानता भी नहीं आपको। और गुस्सा आ गया योगी ने, तो जानती भी नहीं, बोले मैंने कभी देखा नहीं आपको, आप कौन है। बोले अरे तुम दो तीन घंटे पहले यहां से गई थी, तुमने मुझे टक्कर मारी, ठोकर मारी, तुम भी गिर गई, मैं भी गिर गया, और तुमने मुझे क्षमा भी नहीं मांगी मुझसे। उसने कहा मैंने आपको ठोकर मारी, मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं। उसने कहा अरे यहां से तुम जा रही थी कि नहीं। बोले हाँ मैं गई थी यहां से, तो फिर तुम्हें ये ध्यान नहीं। उस युवती ने कहा कि मैं अपने प्रियतम को मिलने जा रही थी और मेरा ध्यान पूरा उसकी ओर था, मैं उसके विचारों में खोई हुई थी कि बस अब जाऊंगी, उससे मिलूंगी, उससे बातें करूंगी, मेरा तो उसमें विचार था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने आपको ठोकर मार दी, क्षमा चाहती हूं। लेकिन योगी जी, ऋषि जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप भी तो भगवान के ध्यान में बैठे थे, मैं तो केवल अपने प्रियतम के ध्यान में थी और उस ध्यान में मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी आपको ठोकर लगी कि क्या हुआ। आपका ध्यान कैसा था भगवान का, आपको कैसे पता चला कि ये ठोकर लगी है, मतलब आपका ध्यान ठीक नहीं था। अरे भगवान पर ध्यान है, आपको क्या पता होना चाहिए क्या हुआ। तो हमारा ध्यान इस तरह होना चाहिए। तो प्रहलाद का इस तरह ध्यान था। बहुत प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने मारने का, जलाने का, सांपों के बीच डाल दिया, जहर से मारने का प्रयास किया, जहर दिया। हम वर्णन कर रहे थे कल भी कि सांपों ने कुछ नहीं किया क्योंकि अनंत देव ने आदेश दिया था कुछ नहीं करना। विष कुछ नहीं कर पाया क्योंकि लक्ष्मी देवी का भाई है, दोनों ने साथ में जन्म लिया है, समुद्र मंथन में विष को मना कर दिया लक्ष्मी देवी ने। ऐसे बहुत सारे कल हमने वर्णन किए थे। तो प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, हिरण्यकश्यपु घबरा गया। सारी शक्ति लगा दी मैंने, ये मराना है। और उस समय फिर हिरण्यकश्यपु ने आज के दिवस पर क्रोध कर दिया, तलवार निकाल ली कि अब मैं ही इसका वध करूंगा। ये भूल गया हिरण्यकश्यपु कि जिसको सांप नहीं मार सके, जिसको अग्नि नहीं मार सकी, पर्वत से ऊपर से फेंक दिया वो नहीं मार सका, समुद्र में नीचे डुबा दिया वो नहीं मार सका, तो क्या मेरी तलवार उसको मार सकती है। ये बुद्धि नहीं रही हिरण्यकश्यपु में। अगर बुद्धि होती तो प्रहलाद महाराज के चरण पकड़ लेता। ये सच्ची बुद्धि है। आप जान लीजिए हिरण्यकश्यपु की बुद्धि आज भी हम सबके अंदर है। क्यों? आज भी हम वो प्रयास नहीं करते। अगर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, हम उनसे और ज्यादा जूझने का प्रयास करते हैं, समर्पण नहीं करते भगवान को। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी शक्ति है माया, मम माया दुरत्यया, इसको पार करना असंभव है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते, जो लोग मेरी शरण में आ जाते हैं, मेरे चरण पकड़ लेते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंत, वो बड़ी सरलता से माया को पार कर जाते हैं। क्यों? शक्ति मेरी है। तो मेरी शक्ति है, मैं जैसे उसको कहूंगा वैसे करेगी। जैसे एक बार एक सन्यासी को उदाहरण दे रहे थे कि वो छोटे थे, एक घर में गए तो उस घर में एक बहुत बड़ा कुत्ता था, इतना ऊंचा कुत्ता, और उनकी भी हाइट उस समय उसी कुत्ते के समान थी। तो जैसे ही गए घर में, उन्होंने प्रवेश किया, उस कुत्ते ने जोर से आक्रमण कर दिया उनको, भौंकता हुआ उनके। आप सोचिए बच्चे की हाइट और कुत्ते की हाइट सेम है, और वो ऐसा कुत्ता आ रहा है खाने के लिए, तो बच्चे की क्या हालत होगी। तो घबरा गया कि अब क्या होगा। लेकिन बस वो मारने ही वाला था, कूदने ही वाला था, पीछे से मालिक की आवाज आई, टॉमी या जो भी नाम होगा हमें नहीं पता। अभी बोलने नहीं चाहिए नाम ऐसे, नहीं तो पता चला किसी के बच्चे का नाम है, वो बोले अरे ऐसे हमारे बच्चे का बोल दिया। आजकल तो रखते भी लोग ऐसे ही नाम है। तो जो भी नाम था उसने पुकारा, साइलेंट या बैठ जाओ। कुत्ता एकदम शांत, एक आवाज नहीं, कोई भौंका नहीं। तो वो बता रहे थे कि मेरे बचपन की बात मुझे अभी तक याद है कि एक खाली आवाज दी उस मालिक ने पीछे से, कुत्ता बस आक्रमण करने ही आ रहा था और कोई बचा नहीं सकता था उस समय, लेकिन एक आवाज चुप। उसके बाद वो घर में घूमे, इधर उधर गए, कुत्ते ने एक आवाज नहीं की। मालिक ने कह दिया चुपचाप बैठ जाओ। इसी तरह कृष्ण है माया मेता। माया किसकी शक्ति है? भगवान की है। हम लोग अपने बल पर उसके लड़ने का प्रयास करेंगे, हो नहीं सकता, लेकिन वही बस भगवान से समर्पण कर दें तो सरलता से हम पार कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज और भगवान के संवाद को कहने की इच्छा थी, लेकिन समय नहीं है, अभी तो हमने शुरू नहीं किया है। केवल हम भूमिका बांध रहे थे कि अब प्रवचन शुरू करेंगे कि भगवान का संवाद क्या हुआ। तो थोड़ा बहुत संक्षेप में उसको कह देते हैं, सार कह देते हैं दोनों के संवाद में क्या हुआ। भगवान जब संतुष्ट हो गए प्रहलाद की प्रार्थनाओं से, भगवान ने प्रहलाद से कहा मांगो, मैं सब चीजों को देने वाला हूं, प्रहलाद मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद भगवान से कहते हैं, हम आपको सार में बता रहे हैं, बहुत सुंदर संवाद है। हमने सोचा था कि आज प्रारंभ से इसको कहेंगे विस्तार से, लेकिन समय नहीं रहा, छोटा सा। प्रहलाद उनसे कहता है हाथ जोड़कर कि भगवान मेरा जन्म असुर कुल में हुआ है, पहले से ही मेरे मन में भौतिक इच्छाएं भरी पड़ी हैं, अब आप और लालच दे रहे हैं मुझे। अर्थात प्रहलाद कह रहे जिसके इच्छा हृदय में पहले से कुछ मांगने की कुछ भोग करने की इच्छा हो उसको आप और कहें जो चाहिए ले लो। भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं और क्यों आप लालच दे रहे हैं मुझे? मेरे हृदय की बात आप मत सुनिए। बहुत सुंदर बात प्रहलाद कहते हैं, हम सबको ये प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, भगवान के सामने जब खड़े हो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मैं जो कहूं उसको सुनना मत, क्योंकि अगर वो सुन लेंगे भगवान तो फिर जान लीजिए बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि हम क्या मांगेंगे भगवान से, हम तो यही मांगेंगे धनम देहि रूपम देहि, भगवान थोड़ा अच्छा धन दे दीजिए रूप दे दीजिए, मैं ये कार्य करने जा रहा हूं इसमें सफलता हो जाए बस। कोई ये नहीं मांगेगा कि भगवान आपके चरण कमलों का आश्रय दे दीजिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्रहलाद ने कहा कि मेरे मुझसे आप ये लालच मत दीजिए मुझे, और हां अगर आप देना चाहते हैं, आप जानते हैं कि हृदय में लोगों की इच्छाएं होती हैं, अब भगवान के द्वारा वो प्रचार कर रहे हैं, कहते लोगों के हृदय में इच्छा होती है, इच्छाओं के द्वारा वो जीता है, और वो व्यक्ति जो भक्ति करते हुए आपकी पूजा आपकी आराधना करते हुए अगर कुछ मांगता है कामना रखता है वो तो एक व्यापारी है भक्त नहीं है। प्रहलाद महाराज बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर भगवान की भक्ति करते हुए हम कुछ मांग रहे हैं इच्छा प्रकट कर रहे हैं भौतिक इच्छाओं को, व्यापारी हैं हम लोग, मांगना नहीं चाहिए भगवान से। भगवान से हम क्या क्या मांगते हैं, बहुत कुछ। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि इस जगत में लोगों की आवश्यकताओं के लिए बहुत है, देर इज इनफ फॉर एवरी वन्स नीड्स बट देर इज नॉट इनफ फॉर वन मैन्स ग्रीड। इस जगत में सभी लोगों की आवश्यकताओं के लिए जो चाहिए वो भरपूर है, लेकिन एक लोभी व्यक्ति के लोभ के लिए इस जगत में भरपूर चीजें नहीं है। अर्थात हम इतना मांगते हैं इतना चाहते हैं, कभी कमी नहीं होती है। आपको एक आश्चर्य की बात बताते हैं, ये ऐसा आश्चर्य है जो सब जानते हैं आप भी जानते हैं फिर भी आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? 84 लाख योनियां है ना, 84 लाख योनियां, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ऐसी है जो धन कमाती है, काम करते हैं धन कमाते हैं ना। अन्य कोई व्यक्ति अन्य कोई योनि में देखा, शेर कभी ऑफिस में जाकर कुछ महीने के एंड में खड़ा है, कुछ पैसा दे दो भूखा मर जाऊंगा, कुछ नहीं, कोई नहीं, एक ही योनि है। 84 लाख योनियों में से एक ही है मनुष्य जो कमाता है। लेकिन आश्चर्य क्या है, ये तो आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य ये है कि कोई भी प्राणी बाकी 80 लाख योनियों में भूख से नहीं मरता और मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता, ये आश्चर्य है। 84 लाख योनियों में कमाता मनुष्य है लेकिन उसी का पेट नहीं भरता। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताया करते थे कि आप एक अन्न की बोरी सड़क पर रख दो, अन्न की बोरी आप सड़क पर रखेंगे चिड़िया आएगी, चिड़िया जानते ना आप लोग, पता नहीं क्या कहते हैं यहाँ की भाषा में, अभी यहां पर तो है अभी भी बची हुई है लेकिन बड़े बड़े शहरों में चिड़िया गायब हो गई है क्योंकि मोबाइल की जो वेव्स होती तरंगे होती हैं उनको चिड़ियाओं को रहने नहीं देते, इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े शहरों से चिड़िया गायब है, केवल गांव में या छोटे शहरों में कारोबार में अभी भी देखने मिलता है क्योंकि बड़े बड़े टावर नहीं लगे अभी तक यहां मोबाइल्स के, जिस दिन लग जाएंगे चिड़िया गायब हो जाएंगी। हमने इस कभी देखा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, किसी ने हमें बताया तो जब हम बंबई गए थे तो हम पूरा दिन देख रहे थे जहां भी जाते थे कि कहीं दिखाई दे, एक चिड़िया नहीं दिखाई दी। पहले हम लोग जब छोटे थे तो घरों में इतनी चिड़ियां हुआ करती थी, आज भी यहां पर हम लोग देखते हैं, अभी नहीं है शाम का समय है क्योंकि चिड़िया जो है नियम का पालन करती है, एक मनुष्य ही नियम तोड़ता है। तो प्रभुपाद समझाते थे आप एक अन्न का बोरी रख दीजिए चिड़िया आएगी, 2-4 दाने जितने उसको चाहिए वो लेके चली जाएगी, ये अन्य कोई प्राणी आएगा थोड़ा बहुत, मनुष्य आएगा खाने के लिए कितना चाहिए, 50 ग्राम या 100 ग्राम, उतना ही तो खा लेंगे, चावल ज्यादा कितना खाते हो एक टाइम में। लेकिन वो पूरी बोरी उठाकर लेकर जाएगा वो उतना नहीं लेकर जाएगा जितना पूरी बोरी उठाकर लेकर जाएगा। प्रभुपाद कहते थे ये मनुष्य है लालच इतना भरा हुआ, हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं लालच को, बार बार थोड़ा मिल गया संतुष्टि नहीं, बस इससे ये मिल जाए मुझे, और लोग कहते हैं बस प्रभु जी इतना मिल जाए उसके बाद बंद, इतना हो जाए, कुछ नहीं होता, उतना मिल जाता है फिर और आ गया। जैसे एक गधा होता है तो गधे को चलाने के लिए कभी कभी उसका मालिक एक डंडी में गाजर बांध के आगे टांग देता है, तो गाजर ऐसे टंगी है, इतनी लंबी डंडी है, उसको डंडी तो नहीं दिख रही है, गाजर दिखती है गधे को, और वो भागता है कि हाँ मुझे गाजर मिले, तो गाजर और आगे जाती है, फिर भागता, फिर गाजर तो डंडे से लटकी है, तो जितना वो आगे भागता है उतना गाजर आगे जाती है, वो भागता रहता है गाजर के लिए और मालिक आराम से बैठा रहता है गाजर टांग कर। ऐसे ही इस जगत में लोगों के सामने गाजर टंगी हुई है, क्या होता है बस प्रभु जी जीवन में उद्देश्य है 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए, देखूंगा भी नहीं कहीं और, एक गाजर टंगी हुई है, वो कभी होता ही नहीं है, भाग रहा है गाजर की ओर, बस मिल गया, बस मिल गया, हम होंगे कामयाब एक दिन, ये गधे का काम है, क्यों गाजर टंगी हुई है, वो सोच रहा है एक दिन मिल जाए, मिलेगी कहां से, मालिक ने तो दो टांग रखी है। इसी तरह हम इस जगत में भागते रहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर जीवन में सुख लिखा है तो जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आएगा, कोई आपके कर्म नहीं ले जा सकता, ये विश्वास क्यों नहीं है हमें, जब दुख होता है तो हमें ये विश्वास है, लोग कहते हैं हाँ हमारे कर्म है, अरे जब दुख है ये विश्वास है कि आपके कर्म कोई नहीं ले जा सकता तो सुख भी कोई नहीं ले जा सकता आपसे, ये विश्वास रखिए, आपके कर्म आपसे कोई नहीं छीन सकता, अगर आपके कर्मों में सुख लिखा है तो वहीं बैठे बैठे आएगा, और अगर नहीं लिखा है आप जीवन भर सर फोड़ लीजिए, केवल खून निकलेगा, सुख नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे हमें विश्वास भगवान के ऊपर होना चाहिए, भगवान की भक्ति में होना चाहिए, समर्पण भगवान को। 84 लाख योनियों में वो योनियां अच्छी हैं, पक्षी अच्छे हैं, पशु अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने समर्पण किया है प्रकृति को, नियमों का पालन करते हैं प्रकृति के, शेर के लिए नियम है शिकार करके खाना, शेर खाता है, कभी आपके किचन में आके नहीं कहता हफ्ता भर हो गया संडे को कम से कम कुछ पनीर वगैरह खिलाओ, कुछ नहीं, ये तो हम लोग जाते हैं ये हफ्ते भर नहीं खाया मच्छी की खुशबू नहीं आई है जो भी है, हा? संडे आ गया संडे को खाना है, कई शेर कहता है ये तो हम लोग खाते हैं, नियम केवल मनुष्य तोड़ता, और इसीलिए उनको पाप नहीं लगता, पाप केवल मनुष्यों को लगता। तो खैर प्रहलाद महाराज कहते हैं इच्छाएं भरी हुई हैं, आपको अगर मेरे मुझे कोई वरदान देना है, बहुत सुंदर वरदान मांगा प्रहलाद महाराज ने, बस इसको कह के बंद करेंगे, ये कथाएं ऐसी हैं कि इनको बंद करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन सामने घड़ी भी लगा रखी है तो जब कथा कहने जाए तो सामने बार बार वो चमकता रहता है, बस बस बंद करो। वैसे नरसिंह चतुर्दशी का आपको बताएं, जब उपवास करना हो तो क्या कहा है नरसिंह देव ने नरसिंह पुराण में, प्रहलाद ने प्रश्न किया था, कलम बता रहे थे कि मैं कैसे भक्त बना, नरसिंह देव ने बताया दिन भर उपवास करो और रात भर जागरण करो, तो हमें आशा है आप में से कई भक्तों ने दिन भर उपवास किया होगा बिना जल लिए, तो अगर आज रात भर भी उपवास कर ले और जागरण कर ले, मतलब अभी 9 तो बजी गए हैं, 5-6 घंटे और बाकी हैं, 6 घंटे तक हम बोलते रहते हैं, कथा चलती रहेगी, जागरण हो जाएगा, और फिर नरसिंह देव ने कहा उससे कि तुम प्रहलाद से कहा तुम वसुदेव थे पापी व्यक्ति थे, वैश्य आगमन कर रहे थे, मदिरा पी रहे थे, लेकिन क्योंकि एक दिन तुमने बस उपवास कर लिया, नरसिंह जयंती के दिन रात भर तुम जगे रहे, वो भी उपवास की दृष्टि से नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं, क्रोध में आकर झगड़ा हो गया था तुम्हारा वैश्या से। तो ऐसे वैसे भी हमें जागरण करना है तो इच्छा हो रही कि पूरी कथा कह देते हैं, ठीक है। तो आप सब तैयार हैं रात भर बैठने के लिए? एक व्यक्ति हरि बोल नहीं बोल रहा, जो बोल रहे हैं वो लोग यहीं रहते हैं, उनको मालूम है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, उनको तो जाना नहीं है, तो वहां सोए या यहां सोए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो जाने वाले किसी ने एक ने हरि बोल नहीं बोला कि अगर प्रभु जी सही में पूरी रात बोलते रहे तो क्या होगा। खैर हम नहीं बोलने वाले, आप लोग संतुष्ट रहिए। प्रहलाद कहते बहुत सुंदर वरदान प्रहलाद ने मांगा, तो कहते फिर भी आपको इच्छा है ना मुझे कुछ देने की, तो हे भगवान मेरे हृदय से कुछ मांगने की इच्छा को निकाल दीजिए। देखिए कितना सुंदर वरदान मांगा, आप देना चाहते हैं ना, ठीक है आपकी भी इच्छा पूरी रहे, मेरे हृदय से सारी इच्छाओं को निकाल दीजिए। इच्छा मतलब मांगने की इच्छा को निकाल दीजिए, मैं मांगू ही नहीं आपसे, ये वरदान मुझे दीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, कुछ तो मांगो प्रहलाद, मेरे लिए मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। भगवान कहते मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे भक्त कुछ नहीं मांगते मुझसे। देखिए भगवान चाहते हैं ऐसे लोगों को देना जो कुछ नहीं मांगते, जो मांगते रहते भगवान उनको लाइन में खड़ा करते, बाद में समय होगा तब आऊंगा, ऑफिस के टाइम पे आना। लेकिन जो नहीं मांगते भगवान उनके पीछे भागते हैं, कुछ तो मांग लो, कुछ तो ले लो। प्रहलाद कहते कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे भक्त कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसे भक्त इन चीजों में नहीं पड़ते हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रसन्नता के लिए मांगो। प्रहलाद ने कहा ठीक है भगवान आप इतना कह रहे हैं तो मैं मांग लेता हूं। दरअसल एक आचार्य समझाते हैं कि जब भगवान ने ये कहा कि कुछ तो मांगो, भगवान प्रहलाद को कह रहे थे कि प्रहलाद मैं जानता हूं तुम्हें अपने लिए कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो वैसे ही मुक्त हो, तुम्हें तो मैं लेकर ही जाऊंगा धाम में, लेकिन दूसरों के लिए मांग लो। तो उस समय प्रहलाद ने कहा कि ठीक है भगवान अगर आपकी इच्छा है, आप देना ही चाहते हैं, तो ये हिरण्यकश्यपु, ये मेरे पिता, इन्होंने बहुत अपराध किया आपके प्रति, और मैं जानता हूं कि जैसे ही आपका स्पर्श हुआ ये शुद्ध हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है कि उस समय भी मरते समय भी आपको शत्रु के रूप में देख रहे थे, तो आप उनके ऊपर क्रोध मत कीजिए, उनको आप मुक्त कर दीजिए, बस मेरी इतनी इच्छा है। किसकी मुक्ति की बात कर रहे हैं प्रहलाद महाराज? वो हिरण्यकश्यपु जिसने जहर देने का प्रयास किया, वो हिरण्यकश्यपु जिसने सांपों के बीच फेंक दिया, पर्वत से फिकवा दिया, समुद्र में दबा दिया, अग्नि में फेंक दिया, उसके लिए प्रहलाद कह रहे हैं मुक्त कर दीजिए, ये भक्त है। प्रहलाद महाराज ये दिखला रहे हैं कि उन्होंने कभी उनको शत्रु माना ही नहीं। और उस समय भगवान ने कहा प्रहलाद से कि प्रहलाद ये क्या कह दिया तुमने, अरे तुम्हारे पिता को मुक्त करने की बात कह रहे हो प्रहलाद, 21 पीढ़ियां तुम्हारी मुक्त हो गई हैं, जिस घर में एक शुद्ध भक्त भगवान का प्रकट हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। प्रभुपाद समझाते 21 पीढ़ियां मतलब क्या है, अभी हम लोग सोच सकते 21 मतलब क्या, पिताजी की तरफ की माताजी की तरफ, क्योंकि दोनों है ना, माताजी सोचेगी मेरा परिवार मुक्त हो, पिता सोचेगा मेरा परिवार मुक्त हो, फिर सात इधर और सात क्या क्या। तो प्रभुपाद कहते हैं बहुत सरल है, 21 कैसे हैं, इस जन्म के थोड़े बहुत पिछले जन्म के माता पिता का भी मुक्त कर देते हैं, उनको और उनके परिवार वालों को। मतलब प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई भक्ति करता है तो न केवल इस जन्म के माता पिता या उनका कुल पवित्र होता है, बल्कि पूर्व जन्म में भी वो जिस परिवार में प्रकट हुए वो भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रहलाद से वो कहते हैं तुम्हारी तो 21 पीढ़ियां मुक्त हो गई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ और मांगो। प्रहलाद ने कहा और कुछ नहीं। और फिर भगवान ने कहा कि तुम राज्य करो, यहां पर रहकर मेरी आज्ञा है, ये राज्य को स्वीकार करो। लेकिन भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि इस राज्य को तुम स्वीकार करो, और अगर तुम्हें चिंता है कि भोगों में पड़ जाओगे तो मैं तुम्हें मार्ग देता हूं, तुम राज्य करो, सतत भगवान ने कुछ चीजें कही प्रहलाद को करने के लिए। पहली चीज कही कि सतत मेरा स्मरण करते रहना, मुझे कभी नहीं भूलना, तो तुम कभी माया में नहीं पड़ोगे। दूसरी चीज शास्त्रों का कभी उल्लंघन नहीं करना, प्रहलाद को उन्होंने कहा शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करना। तो जब तक शास्त्रों का उल्लंघन करते रहोगे, मेरा स्मरण करते रहोगे और अपना कर्तव्य करते रहोगे, उसको केवल कर्तव्य मानकर, जैसे हमारे लिए जीवन में कई कर्तव्य होते हैं, जो परिवार में है उनके लिए परिवार चलाना कर्तव्य है, भगवान कहते केवल कर्तव्य मानकर अगर उसको करते रहोगे, ये तीन चीजें कर लो, कभी माया में नहीं पड़ोगे। हम सब के लिए भी उपदेश है भगवान का, तीन चीजें जो हमारे कर्तव्य, हमको छोड़ना नहीं है, कर्तव्य मानकर करते रहें। दूसरी चीज भगवान का स्मरण कभी नहीं छोड़ें, और तीसरी चीज शास्त्रों को कभी नकारे नहीं या उल्लंघन नहीं करें, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति निश्चित होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इच्छा तो थी कि रात भर कथा करते, लेकिन हमें पता था कि वो छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति कहा कुछ प्रवचन दे रहा था, धीरे धीरे लोग उठकर जाने लगे, तो ऐसा हो गया कि वो सोचने लगा किसी को रुचि नहीं मेरे प्रवचन में। अंत में एक व्यक्ति बैठा रहा, तो उसने को एक व्यक्ति के लिए पूरा प्रवचन दिया, बोले छोड़ूंगा नहीं, पूरा प्रवचन दूंगा। समझिए तीन घंटे का प्रवचन था, आधे घंटे में ही सब लोग उठकर चले गए थे, ये तीन घंटे तक बोलता रहा, एक व्यक्ति बैठा रहा। फिर प्रवचन के बाद उसने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला, मानता हूं तुम्हारे अंदर क्या भक्ति है, अकेले लेकिन तुम बैठे रहे, सुनते रहे। उसने कहा, महाराज मेरे को तो बैठना ही था, मैं तो टेंट वाला हूं, जब तक आप बंद नहीं करोगे तो उठा बाइक लेकर घर पे जाना क्या करूंगा, बैठ रहा हूं तो ये भक्ति। तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों में से कोई ऐसे यहां पर बैठे रहें और हमें ये भ्रम होता रहे कि कोई सुन रहा है। तो इसीलिए यहां पर समाप्त करेंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें, नरसिंह देव से। नरसिंह देव ये हमारे रक्षण के लिए प्रकट होते हैं, और ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में हुए। कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका में भगवान प्रकट हुए एक 5 साल की बच्ची को बचाने के लिए। ये बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है जो न्यूज़पेपर्स में वहां के आया, वहां के ऐसे लोगों ने देखा जो भक्त नहीं है। एक बच्ची छोटी सी, 2 मिनट और लेते, एक छोटी सी बच्ची खेल रही थी, ऐसा वर्णन है कि बच्ची को बचपन से नरसिंह देव पसंद थे। भगवान के कई अवतार हैं, उसको नरसिंह देव बहुत प्रिय थे, बोलती रहती थी नरसिंह देव नरसिंह देव। एक समय पिता उसके खड़े थे फर्स्ट फ्लोर पर, देखा छोटी बच्ची नीचे खेल रही थी, गेंद खेल रही थी, गेंद सड़क पर चली गई, बच्ची भागी, पिता ने देखा पीछे से बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, तो पिता को बचाना था, पिता कूद गए उसको बचाने के लिए, लेकिन जैसे कूदे तो गिरे टेढ़े मेढ़े, उनका पांव टूट गया, वहीं गिरे पड़े और देख रहे हैं कि बच्ची को ट्रक ने उड़ा दिया सामने उनके। पिता कहते हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने एक हमारे आंदोलन के एक सन्यासी को बताई थी, वो कह रहे थे कि मुझे देखकर लगा कि मेरे जीवन जीने का कोई लाभ नहीं, मेरी बच्ची 5 साल की एकदम मेरी आंखों के सामने वो मर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी टांगें टूट गई थी ऊपर से कूदने से। तो वो गिर गई बाहर, उधर पार्क था उसमें जाकर गिरी, उड़ा दिया, तो ट्रक भाग गया, सामने से पुलिस की वैन आ रही थी, पुलिस वाले ने रोका ट्रक को, रोक नहीं पाया, खैर पुलिस वाले ने छोड़ा, बाद में देखेंगे, पहले बच्ची को बचाना है। वो लोग भागे, उन्होंने बच्ची को उठाया, पुलिस वाले कहते हैं हमको डर लग रहा था उसको उठाने में क्योंकि हमें पता था तो मर चुकी है, फिर भी उसको उठाया, लेकर गए छोटे से हॉस्पिटल में, गए हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि हम ये केस को नहीं ले सकते, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, बड़े हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा ठीक है इसको पहले सब इलाज करना होगा, उसकी स्कैनिंग वगैरह की, एक्सरे किया, जब रिपोर्ट लेकर आए सामने, तो जो रिपोर्ट लेकर आई नर्स उसको बहुत डांटा डॉक्टर ने, ये क्या किसकी रिपोर्ट लेकर आई, जानती नहीं यहां पर इतना सीरियस केस है और तुम ऐसे गलत काम करते हो। नर्स ने कहा मुझे नहीं पता, ये तो उसी की रिपोर्ट है। बोले हो ही नहीं सकती, तब तक वो बच्ची को होश आई, हम आपको जल्दी में बता रहे हैं, लेकिन बच्ची को होश आया और उस समय बच्ची ने बताया कि दरअसल जब मैं बॉल उठाने गई और मैंने देखा तो बड़ा ट्रक आ रहा था, तो मैंने माता पिता को याद नहीं किया, नरसिंह देव को याद किया, और उस समय नरसिंह देव आए और उन्होंने मुझे उठाकर पास में रख दिया। उन्होंने मुझे कहा चिंता नहीं करो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और मैं बहुत आराम से रख दिया। लेकिन जाते जाते उनके नाखून लग गए। वो बच्ची छोटी थी तो कहने लगी कि नरसिंह देव को अपने नाखून काटने चाहिए, वो नाखून नहीं काटते हैं। तो उनके नाखून मेरे कमर में लग गए, वो मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, बाकी मुझे कुछ नहीं है। उस बच्ची को कुछ नहीं हुआ, सारा एग्जामिनेशन कर लिया डॉक्टर्स ने। वो पुलिस वाला हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने उसने बच्ची को ट्रक से गिरते हुए देखा था। और फिर जब उनका पूरा एग्जामिनेशन किया गया तो केवल बच्ची के कमर पर एक ऐसे खरोंच के निशान थे। डॉक्टर ने कहा कि ये किसी शेर के निशान है। तो उस बच्ची ने कहा कि मुझे तो भगवान ने बचाया है। तो भगवान आज भी प्रकट होते हैं, ऐसा नहीं है, ये श्रद्धा की बात है, विश्वास की बात है। अगर आपके पास विश्वास है तो भगवान प्रकट होंगे। तो अभी हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे, आरती होगी और फिर आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। कृपया प्रसाद लिए बिना नहीं जाइएगा, आरती और प्रसाद थोड़ा सा समय लगेगा, आरती जल्दी हो जाएगी, लेकिन आप प्रसाद लेके ही जाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।